नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की ओर मंगलवार को एक बार फिर से हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक जम्मू संभाग के कुलगाम जिले के एक स्कूल में पढ़ाने वाली 36 वर्षीय शिक्षिका रजनी बाला को गोपालपोरा इलाके में आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि रजनी बाला सांबा जिले की रहने वाली हैं। गोली लगने के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गई और आनन-फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी मौत हो गई। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस घटना की निंदा करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह दुखद है। निहत्ते नागरिकों पर हुए हालिया हमलों में एक और नाम जुड़ गया। निंदा और शोक के सभी शब्द खोखले हैं। जब तक सरकार ये आश्वासन नहीं देती, हम चैन से नहीं बैठेंगे। वहीं पीडीपी की मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत सरकार की ओर से स्थिति सामान्य होने के दावों के बाद भी नागरिकों की हत्या हो रही है, ये बेहद चिंता की बात है। मैं इस कायरतापूर्ण हमले की निंदा करती हूँ। जम्मू में आतंकियों की ओर से शिक्षिका की हत्या, मध्य कश्मीर के बडगाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के 2 हफ्ते बाद की गई है। गुजरात के पाटीदार नेता और कांग्रेस की गुजरात इकाई के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल 2 जून को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए इस बात की पुष्टि की। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया था और उसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थीं कि वो BJP ज्वाइन करेंगे। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ने के बाद से पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाती रही है और कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था, मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करती है, हमेशा हिंदू धर्म की आस्था को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और गुजरात कांग्रेस के नेता ने बयान दिया कि राम मंदिर की ईंटों पर कुत्ते पेशाब करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर रोड शो में हिस्सा लेने और रिज मैदान में एक रैली को संबोधित करने के लिए मंगलवार को शिमला पहुंचे। उनके साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के महासचिव त्रिलोक जामवाल ने पहले कहा था कि प्रधानमंत्री का 0.5 किलोमीटर का ये रोड शो CTO से रानी झांसी पार्क के बीच हुआ। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री ने देश भर में 16 सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से ऑनलाइन बातचीत की। मोदी किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त के रूप में 80 करोड़ किसानों को 21,000 करोड़ रुपए भी जारी करेंगे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इस साल अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। भारत में एक दिन में कोविड के 2,338 नए मामले सामने आने से देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,31,58,087 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 17,883 पर पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से 19 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,24,630 हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 17,883 हो गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 0.04% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 185 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.74% है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ED ने गिरफ्तार किया है। उन पर यह कार्रवाई कोलकाता में स्थित एक कंपनी से जुड़े हवाला लेन देन के एक मामले में हुई है। वहीं ED की इस कार्रवाई को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सत्येंद्र जैन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो फर्जी हैं। उन्होंने कहा कि 8 साल से सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक फर्जी केस चलाया जा रहा है। ED ने इस कार्रवाई से 1 महीना पहले सत्येंद्र जैन की 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली थी और अब 1 महीने बाद उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी का कहना है कि सत्येंद्र जैन ने इन पैसों का इस्तेमाल जमीन खरीदने और दिल्ली के नज़दीक एक फार्म लैंड खरीदने और अपना कर्जा उतारने के लिए पैसों का इस्तेमाल किया। गौरतलब है कि जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला 2017 में CBI की तरफ से दायर एक केस से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर 14 से 16 मई 2022 के बीच कराए गए सर्वे का वीडियो 30 मई को हिंदू और मुस्लिम पक्ष को सौंप दिया गया। हिंदू पक्ष ने सर्वे की सीडी मिलने के बाद आरोप लगाया कि सर्वे का वीडियो लीक कर दिया गया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि वो 31 मई को कोर्ट के समक्ष इस मामले में शिकायत दर्ज कराएंगे। इस बीच सर्वे का वीडियो कई मीडिया चैनलों पर दिखाया जा रहा है। वीडियो में शिवलिंग, त्रिशूल, डमरू के चिन्ह दिखने का दावा किया जा रहा है। न्यूज चैनल इंडिया टीवी पर चले वीडियो में वजू खाने के भीतर सर्वे की फुटेज का हिस्सा प्रमुखता से दिखाया गया। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।